एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
My strong tower. Her presence here when trouble times come. Lord, in those tough times, those difficult moments, Lord, the stormy situations in my life, and I can call on you, Father, for being always there for me. From the bottom of my heart, I can say, thank you, Lord. Thank you, Lord.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को और हृदयों को खोल दे और तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, उन्हें तेरा वचन समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। और मेरे संग हो पिता परमेश्वर, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है स्वास्थ्य और ताकत के प्रतिभाएं। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 2 में परमेश्वर का सेवक जिसे मसीह अति प्रेम करता था, अपने पत्री में यीशु के लोगों को कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। स्वास्थ्य एक वरदान है जिसका मूल्य बहुत कम लोग समझते हैं। जब हम बीमार नहीं पड़ते हैं तो हम स्वास्थ्य का अधिक महत्व नहीं समझते हैं, पर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य कितना मूल्यवान है। हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियों की दक्षता काफ़ी हद तक हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। हमारे आवेग और जुनून शरीर में बसते हैं और इसे शारीरिक रूप से सबसे अच्छी स्थिति में और सबसे आध्यात्मिक प्रभावों के तहत रखा जाना चाहिए, ताकि हमारी प्रतिभाओं का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके। जो कुछ भी शारीरिक शक्ति को कम करता है वह मन को कमजोर करता है और उसे सही और गलत के बीच अंतर करने में कम सक्षम बनाता है। हम अच्छा चुनने में कम सक्षम हो जाते हैं और जो हम जानते हैं कि सही है उसे करने की इच्छा शक्ति कम होती है। अपनी शारीरिक शक्तियों का दुरुपयोग करने से वह समय कम हो जाता है जिसमें हम अपना जीवन ईश्वर की महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं, और यह हमें ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अयोग्य बनाता है। खुद को गलत आदतें डालने, देर रात तक जागने, स्वास्थ्य की कीमत पर भूख मिटाने से हम कमजोरी की नींव रखते हैं। शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा करके मन या शरीर पर अत्यधिक काम करके हम तंत्रिका तंत्र को असंतुलित कर देते हैं। जो लोग इस तरह से अपने जीवन को छोटा करते हैं और प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके खुद को सेवा के लिए अयोग्य बनाते हैं, वे ईश्वर के प्रति लूट के दोषी हैं और वे अपने साथियों को भी लूट रहे हैं। दूसरों को आशीर्वाद देने का अवसर, वही कार्य जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें दुनिया में भेजा था, उनके अपने कार्यों के कारण छोटा हो गया है और वे खुद को उस कार्य को करने के लिए भी अयोग्य बना चुके हैं जिसे वे कम समय में पूरा कर सकते थे। प्रभु हमें दोषी मानते हैं जब हम अपनी हानिकारक आदतों के कारण संसार को भलाई से वंचित करते हैं। भौतिक कानून का उल्लंघन नैतिक कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ईश्वर भौतिक कानूनों का उतना ही सच्चा रचयिता है जितना कि वह नैतिक कानून का रचयिता है। उसका कानून लिखित है। मनुष्य को सौंपी गई हर तंत्रिका, हर मांसपेशी, हर क्षमता पर अपनी उंगली से प्रहार करता है और हमारे शरीर के किसी भी अंग का हर दुरुपयोग उस कानून का उल्लंघन है। परमेश्वर ने हमें कुछ भेंट और सलाह दिए हैं जिसके व्यवहार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। ये हैं अच्छा पौष्टिक भोजन, प्रतिदिन पर्याप्त व्यायाम, प्रतिदिन स्वच्छ और पर्याप्त पानी पीना। यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन शरीर के त्वचा पर पड़ने देना, संयम सभी बातों में विशेषकर खाने पीने में, स्वच्छ वायु श्वास लेना, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे का विश्राम करना और अंत में और सबसे विशेष प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन जीना। यह सब करने से मनुष्य खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकता है और लंबे समय तक जीवन का आनंद ले सकता है। सभी को मानवीय ढांचे का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अपने शरीर को ईश्वर का काम करने के लिए आवश्यक स्थिति में रख सके, भौतिक जीवन को सावधानी पूर्वक संरक्षित और विकसित किया जाना चाहिए ताकि मानवता के माध्यम से दिव्य प्रकृति अपनी पूर्णता में प्रकट हो सके। आध्यात्मिक जीवन के साथ भौतिक जीव का संबंध शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसे घर और स्कूल में सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। सभी को अपनी शारीरिक संरचना और प्राकृतिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों से परिचित होने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व के नियमों के बारे में जानबूझकर अज्ञानता में रहता है और जो अज्ञानता के कारण उनका उल्लंघन करता है वह ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है। सभी को अपने आप को जीवन और स्वास्थ्य के साथ सर्वोत्तम संभव संबंध में रखना चाहिए। हमारी आदतों को ऐसे मन के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए जो स्वयं ईश्वर के नियंत्रण में हैं। प्यारो, प्रेरित पालुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह और अपनी आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की महिमा करो। यह हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6:19-20 पद में। इसलिए आइए प्यारों भाइयों और बहनों, अपना शरीर का अच्छा ख्याल करें, अच्छा स्वस्थ बनाकर रखें परमेश्वर की सहायता से, ताकि हम उसकी महिमा करें और लोगों की हम सेवा कर सकें। आइए हम दूसरे वरदान ताकत के विषय में बातें करें। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, ना केवल पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से, बल्कि पूरी ताकत से। यह परमेश्वर कहता है, यह परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसमें शारीरिक शक्तियों का पूर्ण बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग शामिल है। मसीह संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही मामलों में एक सच्चे कार्यकर्ता थे, और अपने सभी कार्यों में उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने का दृढ़ संकल्प दिखाया। स्वर्ग और पृथ्वी की चीजें बहुत ज्यादा निकटता से जुड़ी हुई हैं, और मसीह की देखरेख में ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से हैं, जितना कि बहुत से लोग समझते हैं। यह मसीह ही था जिसने पहले संसारिक निवास स्थान की व्यवस्था की योजना बनाई थी। उसने सुलेमान के मंदिर के निर्माण के संबंध में हर विवरण दिया। वह व्यक्ति जिसने अपने संसारिक जीवन में नाजरत के गांव में बढ़ई के रूप में काम किया, वह स्वर्गीय वास्तुकार था जिसने पवित्र भवन की योजना बनाई थी, जहां उसके नाम का सम्मान किया जाना था। यह मसीही थे जिन्होंने निवास स्थान के निर्माणकर्ताओं को सबसे कुशल और सुंदर कारीगरी करने के लिए बुद्धि दी थी। उन्होंने कहा, देखो, मैंने यहूदा के गोत्र के उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, नाम से बुलाया है, और मैंने उसे परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, समझ, ज्ञान और सब प्रकार की कारीगरी में परिपूर्ण किया है, और मैंने उसके साथ दान के गोत्र के अहिसामाक के पुत्र ओहोलियाब को भी दिया है, और जितने बुद्धिमान हैं उनके हृदय में मैंने बुद्धि दी है कि वे सब कुछ बना सके जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह हम पढ़ते हैं निर्गमन 31:2-6। जो लोग को परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाने के लिए कहा था, उन्हें परमेश्वर कुशलता दिया, उन्हें बुद्धि दिया, यह हम यहाँ पर पाते हैं निर्गमन 31:2-6 में। ईश्वर चाहता है कि हर क्षेत्र में उसके काम करने वाले उसे अपनी सारी संपत्ति के दाता के रूप में देखें। सभी सही आविष्कारों और सुधारों का स्रोत वही है जो सलाह देने में अद्भुत और काम करने में उत्कृष्ट है। चिकित्सक के हाथ का कुशल स्पर्श, तंत्रिका और मांसपेशियों पर उसकी शक्ति, शरीर के नाजुक जीवों के बारे में उसका ज्ञान ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान है, जिसका उपयोग पीड़ितों के लिए किया जाना चाहिए। जिस कौशल से बढ़े हथौड़ा चलाता है, जिस ताकत से लोहार निहाई को बजाता है, वह ईश्वर से आता है। उसने मनुष्यों को प्रतिभाएं सौंपी हैं, और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे सलाह के लिए उसकी ओर देखें। हम जो भी करते हैं, काम के जिस भी विभाग में हमें रखा जाता है, वह हमारे दिमाग को नियंत्रित करना चाहता है ताकि हम सही काम कर सके। धर्म और व्यवसाय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही हैं। बाइबल धर्म को हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं उसमें शामिल होना चाहिए। ईश्वरीय और मानवीय एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों में भी उन्हें सभी मानवीय गतिविधियों में, यांत्रिक और कृषि श्रम में, व्यापारिक और वैज्ञानिक उद्यमों में एकजुट होना चाहिए। ईसाई गतिविधि में शामिल हर चीज में सहयोग होना चाहिए। परमेश्वर ने उन सिद्धांतों की घोषणा की है जिनके आधार पर ही यह सहयोग संभव है। उसकी महिमा उन सभी का उद्देश्य होना चाहिए जो उसके साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा सारा काम परमेश्वर के प्रति प्रेम से और उसकी इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी इमारत को खड़ा करते समय ईश्वर की इच्छा का पालन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि धार्मिक सेवा में भाग लेना। और अगर श्रमिकों ने अपने चरित्र निर्माण में सही सिद्धांतों को अपनाया है तो हर इमारत के निर्माण में वे अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर सबसे महान प्रतिभा या सबसे शानदार सेवा को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि स्वयं को वेदी पर एक जीवित भस्म करने वाली बलि के रूप में ना रखा जाए। हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है, जड़ पवित्र होनी चाहिए, अन्यथा परमेश्वर को कोई भी फल स्वीकार्य नहीं हो सकता। प्यारो, प्रभु ने दानियल और यूसुफ को चतुर प्रबंधक बनाया। वह उनके माध्यम से काम कर सकता था क्योंकि वे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए जीते थे। दानियल के मामले में हमारे लिए एक सबक है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि एक व्यवसायी जरूरी नहीं कि एक तेज नीति वाला व्यक्ति हो, उसे हर कदम पर ईश्वर द्वारा निर्देश दिया जा सकता है। बेबीलोन के राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दानियल ईश्वर के एक भविष्यवक्ता थे जिन्हें स्वर्गीय प्रेरणा का प्रकाश प्राप्त हुआ। सांसारिक महत्वाकांक्षी राजनेताओं को ईश्वर के वचन में घास के रूप में दर्शाया गया है जो उगती है और घास के फूल के रूप में जो मुरझा जाती है। फिर भी प्रभु अपनी सेवा में बुद्धिमान पुरुषों, विभिन्न प्रकार के काम के लिए योग्य लोगों की इच्छा रखते हैं। ऐसे व्यवसायियों की आवश्यकता है जो अपने सभी लेन देन में सत्य के महान सिद्धांतों को बुनेंगे और उनकी प्रतिभा को सबसे गहन अध्ययन और प्रशिक्षण द्वारा परिपूर्ण किया जाना चाहिए। यदि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बुद्धिमान और कुशल बनने के अपने अवसरों को बेहतर बनाने के लिए, यह वे लोग हैं जो हमारी दुनिया में परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने में अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। दानियल से हम सीखते हैं कि उसके सभी व्यापारिक लेन देन में जब बारीकी से जांच की गई तो एक भी गलती या त्रुटि नहीं पाया गया। वह एक ऐसा उदाहरण था जो हर व्यवसायी को होना चाहिए। उसका इतिहास दिखाता है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क और हड्डी और मांसपेशियों, हृदय और जीवन की शक्ति को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करता है वह क्या हासिल कर सकता है। परमेश्वर हमें अपने पूरे हृदय और पूरे मन और पूरे आत्मा और पूरे ताकत से प्रेम करने के लिए कहता है। क्या आप अपने ताकत को, जिससे आप अपने काम करते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान मानते हैं? यदि आप इसे परमेश्वर का दिया हुआ वरदान मानकर अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे ताकत से उसकी और लोगों की सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपके ताकत को, आपके प्रतिभाओं को और बढ़ाएगा। आइए हम यह काम करें जिसके लिए परमेश्वर हमें इस दुनिया में भेजा है। हमें परमेश्वर स्वस्थ का वरदान दिया है, परमेश्वर हमें ताकत दिया है कि हम इस दुनिया में काम कर सके। हम जो भी काम करते हैं समर्पित जीवन से काम करें, परमेश्वर की अगुवाई ले, परमेश्वर हमें मदद करेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे कि वह हमारे प्रतिभाओं को और बढ़ाए और हम उसके वरदान को लोगों की सेवा में इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर हम सबों के साथ हों। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें बहुत आशीष दिया है, तूने हमें जीवन दिया है और तूने हमें स्वस्थ दिया है, तूने हमें ताकत दिया है कि हम इस दुनिया में रह करके कुछ काम कर सके। पिता परमेश्वर, हम जो भी काम करते हैं उसमें हम तेरा नाम लेकर करें, तेरा अगुवाई चाहे, हम तेरे साथ मिलकर सहयोग करके काम करें ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके और तेरा महिमा कर सके। तो हमारे प्रतिभाओं को बढ़ा पिता परमेश्वर, जैसे तूने कहा है, जैसे तूने प्रतिज्ञा किया है, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। एक श्रोताओं को हर दिन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
प्रशंसा हो वे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो वे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हो गाओ
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।